हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अंबिका ने चारों ओर देखा। उसने एक साधारण सी हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी, हल्का सा मेकअप भी किया हुआ था। कमरे में और कुछ करने को नहीं था, इसलिए वो ये सब करती थी समय बिताने और खुद को व्यस्त रखने के लिए। अब उसके पास इतने कपड़े थे कि वो उनमें से बदलती रहती थी। उसने मंगलसूत्र और सिंदूर भी पहना हुआ था। उसे खुद भी नहीं पता था क्यों, लेकिन वो एकदम सुहागिन की तरह तैयार होती थी। हाथ में मैचिंग चूड़ियां भी पहनी थीं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी 6-6 चूड़ियां दोनों हाथों में थीं। वेदांश को अंबिका को इस तरह नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार देखना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वो इतना ज्यादा अच्छे से तैयार नहीं होती थी। वो काफी साधारण दिखती थी। वेदांश को वो ऐसे भी बहुत खूबसूरत लगती थी। कमरे में आने के बाद वो अक्सर उसकी खूबसूरती में खो जाता था और काफी देर तक चुपचाप उसकी तरफ देखता रहता था। उसे जो कहना होता था वो भी अक्सर भूल जाता था। आज भी जब वो कमरे में गया तो अंबिका उसे बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर मायूसी बिल्कुल भी नहीं जंच रही थी। इसलिए उसने सोचा कि वो अंबिका को अपने साथ घर के बाकी हिस्सों में ले जा सकता है। अब वो उसके दर्द को भी महसूस करने लगा था कि इस तरह कमरे में रखना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, लेकिन उसकी असुरक्षा उसे ऐसा करने पर मजबूर करती थी। वे दोनों सीढ़ियां उतरकर नीचे आए। अंबिका ने देखा कि वेदांश के सारे बॉडीगार्ड और काम करने वाले आदमी उन दोनों की तरफ देखकर सिर झुका रहे थे। वेदांश को इज्जत से देख रहे थी। वैसे ही सबकी निगाहें अंबिका पर भी थीं, लेकिन ज्यादातर ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा भी नहीं। अपनी जिंदगी में पहली बार अंबिका को ऐसा लगा जैसे वो कहीं की रानी हो, लेकिन उसे पता था कि ये सब कुछ सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि इसलिए था क्योंकि वो वेदांश के साथ थी। अंबिका ने वेदांश की तरफ देखा। वो सामान्य रूप से चल रहा था, जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। वो तो रोज ही ये सब अनुभव करता होगा, इसलिए उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अंबिका का मुंह हैरानी से खुला हुआ था। अंबिका ने मन में सोचा, क्या सच में सब इसकी इतनी इज्जत करते हैं या सिर्फ डर की वजह से? और वैसे भी ये सारे लोग तो इसके ही हैं, इन्हें इसने ही बोला होगा ऐसा करने के लिए, और मुझे देखकर भी सब ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे मैं यहाँ की मालकिन हूँ, लेकिन सच में अब तो मैं वही हूँ। नहीं, मेरा मतलब है, इसके साथ शादी तो हुई है मेरी, और जो कुछ भी है वो हमारे बीच है, एक कमरे के अंदर। मुझे नहीं लगता सबको इस बारे में पता होगा कि हमारा रिश्ता सामान्य नहीं है, या फिर शायद बाकियों से थोड़ा अलग है। अंबिका के दिमाग में ये सब चल ही रहा था कि वे दोनों नीचे हॉल में आ गए। वो हॉल बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि अंबिका और वेदांश की शादी भी वहां पर हुई थी। शादी का मंडप लगने के बाद काफी मेहमान और मीडिया वहां आराम से आ गए थे, लेकिन अभी बीच में एक बहुत बड़ी ग्लास की गोल मेज रखी हुई थी। उसके चारों ओर 2-3 सोफा सेट गोल में लगाए गए थे। सोफा सेट का रंग हल्का नीला था और उस पर मुलायम कवर चढ़े हुए थे जो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। कोई भी वहां सोफा सेट पर बैठा हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी सब कुछ सलीके से सजा हुआ था। अच्छी लेकिन कम सामान के साथ सजावट हुई थी वहां पर। वेदांश ने अभी भी उसका हाथ इस तरह पकड़ा हुआ था जैसे कि बस हाथ छोड़ेगा और अंबिका कहीं गायब हो जाएगी। अंबिका ने देखा कि वहां मौजूद कुछ आदमियों की नज़र उनके हाथों पर थी और आपस में बात करते हुए वे शायद मुस्कुरा रहे थे। अंबिका समझ गई कि वे उन दोनों के बारे में ही बात कर रहे हैं, इसलिए अंबिका ने वेदांश के हाथों से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वेदांश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या है, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ने वाला, चुपचाप खड़ी रहो, अपने साथ लेकर आया हो ना तो मेरे साथ ही रहना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पर। अंबिका ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, कहीं भाग नहीं जाऊंगी मैं, वैसे भी इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, तुम्हारी सिक्योरिटी गार्ड सब कोई, कैसे निकलकर भाग जाऊंगी मैं इनके बीच में, छोड़ो मेरा हाथ, कब तक पकड़े रहोगे? वेदांश ने तुरंत जवाब दिया, हमेशा। अंबिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा क्योंकि उसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। वेदांश ने अपनी बात संभालते हुए कहा, जब तक मेरा मन करेगा तब तक, क्या करोगी तुम, नहीं छोड़ रहा मैं, वैसे भी कमरे से बाहर लेकर आया हूँ ना, इसलिए चुपचाप खड़ी रहो, मैं हाथ नहीं छोड़ने वाला। वेदांश ने साफ लफ्जों में हाथ छोड़ने से मना कर दिया, तो फिर अंबिका ने भी कोशिश नहीं की और उसके बगल में ही खड़ी रही। तभी वेदांश की माँ वहाँ आ गईं। उन्होंने अंबिका और वेदांश को एक साथ देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। वो तुरंत आगे आईं और अंबिका से पूछा, कैसी हो बेटा, तुम अब ठीक तो हो ना? तुम्हारी चोट में ज्यादा दर्द तो नहीं है? सॉरी, मैं कल आ नहीं पाई थी तुमसे मिलने और आज भी सुबह से। अंबिका ने प्यार से जवाब दिया, हाँ हाँ आंटी, मैं ठीक हूँ और अब इतना दर्द नहीं हो रहा है, शायद वो घाव ठीक हो गया है। वेदांश की माँ ने उन दोनों को लंच के लिए बुलाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर आ ही गए हो दोनों, तो चलो डाइनिंग एरिया में, आज हम सब साथ में लंच करते हैं। वैसे भी लंच का टाइम हो गया है। अपनी सास की बात सुनकर अंबिका को भी अच्छा लगा, क्योंकि जब से वो आई थी तब से वो कमरे में ही अपने बिस्तर पर लंच कर रही थी। वो कहीं और जाकर खाना नहीं खा पाई थी। वो तुरंत ही उस तरफ जाने लगी, लेकिन वेदांश ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और उसे वापस अपनी तरफ खींचते हुए बोला, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें इतनी ही भूख लगी है तो मैं रूम में तुम्हारे लिए खाना लेकर आ जाऊँगा, बाकी लोगों के साथ बैठकर खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेदांश के ऐसे मना करने पर अंबिका ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन वो आपकी माँ है और तो कोई है भी नहीं यहाँ पर, कौन से बाकी लोग? वेदांश गुस्से से उनकी तरफ देख रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया तो उसकी माँ ने अंबिका की बात का जवाब देते हुए कहा, अरे इसे मुझसे ही प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं बेटा, जैसा तुम्हारा मन करे, मैं तो बस सोच रही थी कि आज बेटे बहू के साथ बैठकर खाऊंगी, लेकिन मेरा बेटा तो मेरा बेटा ही नहीं, ये भूल जाती हूँ मैं कभी कभी। उनकी बात सुनकर अंबिका बहुत कंफ्यूज हो गई और जवाब की उम्मीद में वेदांश की तरफ देखने लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। तभी वेदांश की माँ ने अंबिका से कहा, अच्छा ठीक है, ये खाना तो खाने नहीं देगा तुम्हें मेरे साथ, लेकिन चलो कुछ और ही बात करते हैं। तुम बताओ तुम्हें क्या बनाना आता है? वैसे तो तुम्हें सब कुछ आता होगा, देखकर ही एकदम सर्वगुण संपन्न लगती हो, लेकिन फिर भी ये कदर नहीं करता तुम्हारी। वेदांश की माँ अंबिका को अपने साथ सोफे की तरफ ले जाने लगी तो वेदांश उनके बीच आते हुए बोला, मेरे सामने ही मेरी बुराई कर रही हैं और मेरी बीवी के कान भर रही हैं मेरे खिलाफ, और क्यों, ऐसा क्यों लगा आपको कि कदर नहीं करता मैं अपनी पत्नी की? और आपको तो बस मौका चाहिए मेरी बुराई करने का, इतनी बुराइयाँ हैं भी नहीं मेरे अंदर जितनी आपको दिखती हैं। अंबिका भी अपनी सास की तरफदारी करते हुए बोली, माँ सच बोल रही हैं और आप उनसे ऐसे क्यों बात करते हैं? वो आपकी माँ है, आपकी माँ जिंदा है, फिर भी आपको उनकी कदर नहीं है। मुझसे पूछें, आपको पता है मेरी माँ की डेथ को इतने साल हो गए हैं और मैं उन्हें आज भी रोज याद करती हूँ। अगर वो मेरे साथ होती तो मेरी लाइफ भी बहुत आसान हो जाती, लेकिन नहीं, वो मुझे छोड़कर चली गई। और आप क्रमशः
क्या अंबिका को समझ में आएगा वेदांश और उसकी माँ के इस रिश्ते का सच, और वो क्यों अपनी माँ से इतना नाराज रहता है और इस तरह से बात करता है? क्या वेदांश की माँ अंबिका को पूरी बात बताएंगी? पता चलेगा अगले एपिसोड में। जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट में जरूर बताइए आपको कैसी लग रही है ये कहानी। साथ में नीचे हमने जिन कहानियों के लिंक शेयर किए हैं एक बार उन सबको भी पढ़कर जरूर देखिए, और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, आप सबको वहां से सारी कहानियों से जुड़े अपडेट आसानी से मिल जाएंगे।